का था, रूप वही, रूप नया।
गाथा में अभी आप सुन रहे हैं अज्ञेय की लिखी कहानी रमन्ते तत्र देवता। अक्टूबर सन 1946 का कलकत्ता। तब हम लोग दंगे के आदी हो गए थे। अखबार में इक्के दुक्के खून और लूटपाट की घटनाएं पढ़कर तन नहीं से हरता था। इतने से ये भी नहीं लगता था कि शहर की शांति भंग हो गई। शहर बहुत से छोटे छोटे हिंदुस्तान पाकिस्तानों में बंट गया था, जिनकी सीमाओं की रक्षा पहरेदार नहीं करते थे, लेकिन जो फिर भी परस्पर अनुलंघ्य हो गए थे। लोग इसी बंटी हुई जीवन प्रणाली को लेकर भी अपने दिन काट रहे थे। मान बैठे थे कि जैसे जुकाम होने पर एक नासिका बंद हो जाती है तो दूसरी से श्वास लिया जाता है। तनिक कष्ट होता है तो क्या हुआ, कोई मर थोड़े ही जाता है। वैसे ही श्वास की तरह नागरिक जीवन भी बंट गया तो क्या हुआ, एक नासिका नहीं एक फेफड़ा भी बंद हो सकता है और उसकी सड़न का वेश सारे शरीर में फैलता है और दूसरे फेफड़े को भी आक्रांत कर लेता है। इतनी दूर तक रूपक को घसीट ले जाने की क्या जरूरत है। बीच बीच में इस या उस मोहल्ले में विस्फोट हो जाता था, तब थोड़ी देर के लिए उसके आसपास के मोहल्ले में जीवन स्थगित हो जाता था। व्यवस्था पटकी खा जाती थी और आतंक उसकी छाती पर चढ़ बैठता था। कभी दो एक दिन के लिए भी गड़बड़ रहती थी, तब बात कानों कान फैल जाती थी कि वो पाड़ा भालो ना, और दूसरे मोहल्ले में लोग दो चार दिन के लिए उधर आना जाना छोड़ देते थे। उसके बाद ढर्रा फिर उभर आता था और गाड़ी चल पड़ती थी। हठात एक दिन कई मोहल्लों पर आतंक छा गया। ये वैसे मोहल्ले थे जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तानी की सीमाएं नहीं बांधी जा सकती थी, क्योंकि प्याज की परतों की तरह एक के अंदर एक जमा हुआ था। इनमें वो होता था कि जब कहीं आसपास कोई गड़बड़ हो या गड़बड़ की अफवाह हो तो उसका उद्भव या कारण चाहे हिंदू सुना जाए चाहे मुसलमान, सब लोग अपने अपने किवाड़ बंद करके जहां के तहां रह जाते। बाहर गए हुए शाम को घर ना लौटकर बाहर ही कहीं रात काट देते, और दूसरे तीसरे दिन तक घर के लोग ये ना जान पाते कि गया हुआ व्यक्ति इच्छापूर्वक कहीं गया है या कहीं रास्ते में मारा गया है। मैं तब बालीगंज की तरफ रहता था। यहां शांति थी और शायद ही कभी भंग होती थी, सो खबरें यहां सब मिल जाती थी और कभी कभी आगामी प्रोग्रामों का कुछ पूर्वाभास भी। मंत्रणाएं यहां होती थीं, शरणार्थी यहां आते थे, सहानुभूति के इच्छुक आकर अपनी गाथाएं सुनाकर चले जाते थे। आतंक का दूसरा दिन था। तीसरे पहर घर के सामने बरामदे में आराम कुर्सी पर पड़े पड़े मैं आने जाने वालों को देख रहा था। आने जाने वाले यूं भी अध्ययन की श्रेष्ठ सामग्री होते हैं, ऐसे आतंक के समय में तो और भी अधिक। तभी देखा मेरा पड़ोसी एक सिख सरदार साहब अपने साथ तीन चार और सिखों को लिए हुए घर की तरफ जा रहे हैं। ये अन्य सिख मैंने पहले इधर नहीं देखे थे, कौतूहल स्वाभाविक था। और फिर आज अपने पड़ोसी को लंबी कृपान लगाए देखकर तो और भी अचंभा हुआ। सरदार बिशन सिंह सिख तो थे पर बड़े संकोची, शांतिप्रिय और उदार विचारों के प्रतीक रूप से कृपान रखते रहे हों तो रखते रहे, मैंने देखी नहीं थी। और ऐसी उद्धट ढंग से कोट के ऊपर कमरबंद के साथ लटकाई हुई तो कभी नहीं। मैंने कुछ पंजाबी लहजा बनाकर कहा, सरदार जी आ किधर फौजा चुनिया ने। बिशन सिंह ने व्यस्त आंखों से मेरी ओर देखा, मानो कह रहे हो मैं जानता हूं कि तुम्हारे लहजे पर मुस्कुराकर तुम्हारा विनोद स्वीकार करना चाहिए, पर देखते तो हो मैं फंसा हूं। स्वयं उन्होंने कहा, फिर हाजिर हो गया, टोली आगे बढ़ गई। जो लोग आराम कुर्सियों पर बैठकर आने जाने वालों को देखा करते हैं उन्हें एक तो देखने को बहुत कुछ नहीं मिलता है, दूसरे जो वे देखते हैं उसके साथ उनका लगाव तो जरा भी होता नहीं कि वो मन में जम जाए। मैं भी सरदार बिशन सिंह को भूल सा गया था जब रात को वो मेरे यहां आए, लेकिन अचंभे को दबाकर मैंने कुर्सी दी और कहा, आ बैठो, बड़ी कृपा कित्ती। वे बैठ गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आज जीव बड़ा दुखी हो गया है। मैंने पंजाबी छोड़कर गंभीर होकर कहा, क्या बात है सरदार जी, खैर तो है? दंगा और खून खराबा ना हो तो कैसे ना हो, जबकि हम रोज नई जगह उसकी जड़ें रो पाते हैं, फिर उन्हें सींचते हैं। मुझे तो अचंभा होता है, हमारी कौम बची कैसे रही अब तक। उनकी वाणी में दर्द था। मैंने समझा कि वे भूमिका में उसे बहा न लेंगे तो बात ना कर पाएंगे, इसलिए चुप सुनता रहा। वे कहते गए, सारे मुसलमान अरब और फ्रांस और तातार से नहीं आए थे? 100 में से एक होगा जिसको हम आज अरब या फ्रांस के तातार की नस्ल कह सकें। और मेरा तो ख्याल है, ख्याल नहीं तजुर्बा है, कि अरब और ईरानी बड़ा नेक, मिलनसार और अमन पसंद होता है, तातारियों से साबिका नहीं पड़ा। बाकी सारे मुसलमान कौन है? हमारे भाई, हमारे मजलूम, जिनका मुंह हम हजारों बरसों से मिट्टी में रगड़ते आए हैं, वही आज मुंह उठाकर हम पर थूकते हैं तो हमें बुरा लगता है। पर वे मुसलमान हैं, इसलिए हम खिसिया कर अपने और भाइयों को पकड़कर उनका मुंह मिट्टी में रगड़ते हैं। और भाइयों को ही क्यों, बहनों को पैरों के नीचे रोनते हैं और चू नहीं करने देते, क्योंकि चू करने से धर्म नहीं रहता। आवेश में सरदार की जुबान लड़खड़ाने लगी थी। वो क्षण भर चुप हो गए, फिर बोले, बाबू साहब, आप सोचते हो गए ये सिख होकर मुसलमानों का पक्ष करता है। ठीक है, उनसे किसी का बैर हो सकता है तो हमारा हो, पर आप सोचिए तो, मुसलमान है कौन? मजलूम हिंदू ही तो मुसलमान है। हमने जिनसे हिकारतें की वो हमसे नफरत करे तो क्या बुरा करता है? हमारा कर्ज ही तो अदा करता है ना। मैं तो ये भी कहता हूं कि ये ठीक न भी हो तो भी हम नुक्स निकालने वाले कौन होते हैं? इंसान को पहले अपना ऐब देखना चाहिए, तभी वो दूसरे को कुछ कहने लायक बनता है। आप नहीं मानते? मैंने कहा, ठीक कहते हैं, लेकिन इंसान आखिर इंसान है, देवता नहीं। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, देवता? आप कहते हैं देवता, काश कि वो इंसान भी हो सकता, बल्कि वो खरा हैवान भी होता तो भी कुछ बात थी। हैवान भी अपने नियम कायदे से चलता है, लेकिन बहस करने नहीं आया। आप आज की ही बात सुन लीजिए। मैंने कहा, आप कहिए, मैं सुन रहा हूं। आप जानते ही हैं कि मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, जहां जब तक कुछ लोगों ने पनाह पाई है और जब तक मैंने भी वहां पहरा दिया है। ये कोई तारीफ की बात नहीं, गुरुद्वारे की सेवा का भी एक ढर्रा है। पनाह देने की भी रीत चली आई है, इसलिए ये हो गया है। हम लोगों ने इंसानियत की कोई नई इजाद नहीं की। खैर, कल मैं शाम बाजार से वापस आ रहा था तो देखा रास्ते में अचानक मिनटों में सन्नाटा छा रहा है, तो एक ने मुझे भी पुकार कर कहा, घर जाओ, दंगा हो गया है। पर यह ना बता पाए कि कहां, ट्रॉम तो बंद थी ही। धर्मतल्ले के पास मैंने देखा एक औरत अकेली घबराई हुई आगे दौड़ती चली जा रही है। एक हाथ में एक छोटा बंडल है, दूसरे में जोर से एक छोटा मनी बैग दाबे है, रो रही है। देखने से भद्दर लोग की थी। मैंने सोचा भटक गई है और डरी हुई है, यूं भी ऐसे वक्त में अकेली आना जाना और फिर बंगालिन का ठीक ठाक नहीं, पूछकर पहुंचा दूं। मैंने पूछा, मां तुम कहां जाओगी? पहले तो वो और सहमी, फिर देखकर कि मुसलमान नहीं सिख हूं, जरा संभली। मालूम हुआ कि उत्तरी कलकत्ता से उसका खाबिंद और वो दोनों धर्मतल्ले आए थे। तय हुआ था कि दोनों अलग अलग सामान खरीदकर केसी दास की दुकान पर नियत समय पर मिल जाएंगे और फिर घर जाएंगे। इसी बीच गड़बड़ हो गई, वो सन्नाटे से डरकर घर भागी जा रही है। दास की दुकान पर नहीं गई, रास्ते में चांदनी है जो उसने सदा सुना है कि मुसलमानों का गढ़ है। मैंने उससे कहा कि डरे नहीं, मेरे साथ धर्म तल्ले पार कर ले। अगर केसी दास की दुकान पर उसका आदमी मिल गया तो ठीक, नहीं तो वहां से बालीगंज की ट्राम तो चलती होगी, उसमें जाकर गुरुद्वारे में रात रह जाएगी और सवेरे मैं उसे घर पहुंचाऊंगा। दिन छिप चला था, बिजली सड़कों पर वैसे ही नहीं है, ऐसे में 5-6 मील पैदल दंगे का इलाका पार करना ठीक नहीं है। इतना कहकर सरदार बिशन सिंह क्षण भर रुके और मेरी ओर देखकर बोले, बताइए मैंने ठीक कहा है कि गलत, और मैं क्या कर सकता था? ठीक ही तो कहा, और रास्ता ही क्या था? मगर ठीक नहीं कहा, बाद में पता लगा कि मुझे उसे अकेली भटकने देना चाहिए था। क्यों? मैंने अचकचा कर पूछा। सुनिए, सरदार ने एक लंबी सांस ली। केसी दास की दुकान बंद थी, पति देवता का कोई निशान नहीं था। मैं उस औरत को ट्राम में बिठाकर यहां ले आया, रात वो गुरुद्वारे के ऊपर वाले कमरे में रही, मैं तो अकेला हूं, आप जानते हैं। मेरी बहन ने उसे वहीं ले जाकर खाना खिलाया और बिस्तरा वगैरह दे आई। सवेरे मैंने एक सिख ड्राइवर से बात करके टैक्सी की और ढूंढता हुआ उसके घर ले गया। श्याम मुकुर लेन में था, या एकदम उत्तर में, दरवाजा बंद था। हमने खटखटाया तो एक सुस्त से महाशय बाहर निकले, पति देवता। आप लोगों को देखते ही उछल पड़े होंगे। सरदार क्षण भर चुप रहे। हां उछल तो पड़े, लेकिन बहू को देखकर तो नहीं, मुझे देखकर। उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली। महाशय केसी दास घर पर नहीं ठहरे थे, दंगे की खबर हुई तो कहीं एक दोस्त के यहां चले गए थे, रात वहीं रहे थे, हमसे कुछ पहले ही लौट कर आए थे, आंखें भरी थीं। दरवाजा खोलकर मुझे देखकर चौंके और फिर मेरे पीछे स्त्री को देखकर तनिक ठिठके और खड़े खड़े बोले, आप कौन? मैंने कहा, पहले इन्हें भीतर ले जाएं, फिर मैं बतलाता हूं। स्त्री पहले ही सकुची झुकी खड़ी थी। इस बात पर उसने घूंघट जरा आगे सरकाकर अपने को और भी समेट सा लिया। बिशन सिंह फिर जरा चुप रहे, मैं भी चुप रहा। पति ने फिर पूछा, ये रात आपके यहां रही? मैंने कहा, हां हमारे गुरुद्वारे में रही, शाम को यहां आना मुमकिन नहीं था। उन्होंने फिर कहा कि आपके बीवी बच्चे हैं? मैंने कहा, नहीं मेरी विधवा बहन साथ में रहती है। पर इससे आपको क्या? उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। वहीं से स्त्री की ओर उन्मुख होकर बंगाली में पूछा, तुम रात को क्या जाने कहां रही हो? सवेरे तुम्हें यहां आते शर्म ना आई? सरदार बिशन सिंह ने रुककर मेरी ओर देखा। मैंने कहा, नीच। बिशन सिंह के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान झजक कर खो गई। क्यों न जाने क्या करता उस आदमी को, और सोचता हूं कि स्त्री भी न जाने क्या जवाब देती। लेकिन औरत जात का जवाब न देना भी कितना बड़ा जवाब होता है, इसको आजकल का कीड़ा इंसान क्या समझता है। मैंने पीछे धमाका सुनकर मुड़कर देखा, वो औरत गिर गई थी बेहोश होकर। मैं फौरन उठाने को झुका, पर उस आदमी ने ऐसा तमाचा मारा था कि मेरे हाथ ठिटक गए। मैंने उसी से कहा, उठाओ पानी का छींटा दो, पर वो सरका नहीं। फिर उसकी ढबर ढबर आंखें छोटी होकर लकीरें सी बन गई और एकाएक उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं स्तब्ध सुनता रहा, कुछ कहने को न मिला। लोग इकट्ठा होने लगे थे, मैं उस स्त्री की बात सोचकर ज्यादा भीड़ करना भी नहीं चाहता था। ड्राइवर की मदद से मैंने उसे टैक्सी में रखा और घर ले आया। बहन को उसकी देखभाल करने को कहके बाबा बचित्तर सिंह के पास गया, वे हमारे बुजुर्ग हैं और गुरुद्वारे के ट्रस्टी भी। वहीं हम लोगों ने मीटिंग करके सलाह की कि क्या किया जाए। कुछ की तो राय थी कि उस आदमी को कत्ल कर देना चाहिए, पर उससे उसकी विधवा का मसला तो हल ना होता। फिर यही सोचा गया कि 5 सरदारों का जत्था गुरुद्वारे की तरफ से उस औरत को उसके घर लेकर जाए और उसके आदमी से कहे कि या तो इसको अपना कर घर में रखो, या हम समझेंगे कि तुमने गुरुद्वारे की बेइज्जती की और तुम्हें काट डालेंगे। आप शायद कल तीसरे पहर वहीं से लौट रहे होंगे। हाँ, नहीं तो आप जानते हैं मैं वैसे किरपान नहीं बांधता। एक जमाने में जिन वजूहात से गुरुओं ने किरपान बांधना धर्म बताया था, आज उनके लिए राइफल से कम कोई क्या बांधेगा। निरी निशानी का मुंह अपनी बुजदिलों को छुपाने का तरीका बन जाता है। और क्या, खैर हम लोग औरत को लेकर गए, हमें देखते ही पहले तो और भी कई लोग जुड़ गए, पर जत्थे को देखकर शायद पति देवता को अकल आ गई। उसने हमसे कहा, अच्छा ठीक है, आप लोगों की मेहरबानी, और औरत से कहा, चल भीतर चल, बस हमें आने या बैठने को नहीं कहा। हम बैठते तो क्या उस कमीने के घर में। औरत भीतर चली गई, कुछ बोली नहीं। बोलती क्या, जब से होश आया तब से बोली नहीं थी। उसकी आंखें न जाने कैसी हो गई थी, उसमें झांक कर भी कोई जैसे कुछ नहीं देखता था, सिर्फ एक दीवार। मुझसे तो उनके पास नहीं ठहरा जाता था, वो चुपचाप खड़ी रही। जब हम लोगों ने कहा, आओ मां घर में आओ अब, तब जैसे मशीन सी दो तीन कदम आगे बढ़ी। पति के फैलते सिकुड़ते नयनों की ओर उसने देखा, एक एक पर जैसे और झुकती और छोटी होती जाती थी। देहरी तक ही गई, फिर वहीं लड़खड़ा कर बैठ गई। मैं तो समझा था कि फिर गिरी, पर बैठते बैठते उसका सिर चौखट से टकराया तो चोट से वो संभल गई, बैठ गई। उसे वैसे ही छोड़कर हम चले आए। हम दोनों देर तक चुप रहे। थोड़ी देर बाद सरदार बिशन सिंह ने कहा, बोलिए कुछ भाई साहब। मैंने कहा, चलिए बात खत्म हो गई जैसे तैसे। उन्होंने उसे घर में ले लिया। बिशन सिंह ने तीखी दृष्टि से मेरी तरफ देखा, आप सच सच कह रहे हैं बाबू साहब? मैंने चौंक कर कहा, क्यों झूठ क्या है? आप सचमुच मानते हैं कि बात खत्म हो गई? मैंने कुछ रुकते रुकते कहा, नहीं ऐसा तो नहीं मान पाता, यानी हमारे लिए भले ही खत्म हो गई हो, उनके लिए तो नहीं हुआ। हमारे लिए भी क्या हुई? पर उसे अभी छोड़िए, बताइए कि उस औरत का क्या होगा। मैंने अपने शब्द तौलते हुए कहा, बंगाल में आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि स्त्री ने सास या ननद या पति के अत्याचार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया या कुएं में कूद पड़ी, और कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं कि स्त्री के कपड़ों में आग लग गई, चाहे वो हो चाहे मिट्टी के तेल के साथ। हाँ हो सकता है, आप माफ करना, मैं कड़वी बात कहने वाला हूं। इससे अगर आपको कुछ तसल्ली हो तो कहूं कि अपने को हिंदू मानकर ही ये कह रहा हूं। आप हिंदू है ना, इसलिए यही सोचते हैं, वो मर जाएगी छुटकारा हो जाएगा। हिंदू धर्म उदार है ना, मारता नहीं, मरने का सब तरह से सुविधा कर देता है। इसमें दो फायदे हैं, एक तो कभी चूक नहीं होती, दूसरे ये तरीका दया का भी है। लेकिन ये बताइए, अगर आदमी पशु है तो औरत क्यों देवता हो? देवता मैं जानबूझकर कहता हूं, क्योंकि इंसान का इंसाफ तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। देवता सूद ना ले, ढेले पाई की वसूली पूरी करते हैं, करते हैं कि नहीं? मैंने कहा, सरदार साहब आपको सदमा पहुंचा है, इसलिए आप इतनी कड़वी बात कर रहे हैं। मैं उस आदमी को अच्छा नहीं कहता, पर एक आदमी की बात को आप हिंदू जाति पर क्यों थोपते हैं? क्या वो सचमुच एक आदमी की बात है? सुनिए, मैं जब सोचता हूं कि क्या हो तो उस आदमी के साथ इंसाफ हो, तब यही देखता हूं कि वो औरत घर से दुत्कारी जाकर मुसलमान हो, मुसलमान जने, ऐसे मुसलमान जो एक एक सौ सौ हिंदुओं को मारने की कसम खाए। और आप तो साइकोलॉजी पढ़े हैं ना, आप समझेंगे, हिंदू औरतों के साथ सचमुच वही करें जिसकी झूठी तोहमत उसकी मां पर लगाई गई। देवताओं का इंसाफ तो हमेशा यही चलता आया है, नफरत के एक एक बीज से हमेशा सौ सौ जहरीले पौधे उगे, नहीं तो ये जंगल यहां उगा कैसे जिसमें आज हम आप हो गए हैं, और क्या जाने अभी निकलेंगे कि नहीं। हम रोज दिन में कई बार नफरत का नया बीज बोते हैं, और जब पौधा फलता है तो चीखते हैं कि धरती ने हमारे साथ धोखा किया। मैं काफी देर चुप रहा। सरदार बिशन सिंह की बात चमड़ी के नीचे कंकड़ सी रगड़ने लगी, वातावरण बुझीला हो गया। मैंने उसे कुछ हल्का करने के लिए कहा, सिख कौम की शिवलरी मशहूर है। देखता हूं उस बेचारी का दुख आपकी शिवलरी को छू गया है। उन्होंने उठते हुए कहा, मेरी शिवलरी? और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे स्वर में जिसमें एक अजीब गूंज थी, मेरी शिवलरी। भाई साहब, उन्होंने मुंह फेर लिया, लेकिन मैंने देखा उनके होठों की कोर कांप रही है, हल्की सी लेकिन बड़ी बेबसी के साथ। अभी आपने सुनी अज्ञेय की लिखी कहानी रमन्ते तत्र देवता। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था भूपेश कुमार पंड्या ने।